तो अब हम एक बहुत बड़ी और खूबसूरत इबादत का तذکرہ करेंगे जो कि ज़िंदगी में बस एक बार है। और अगर एक ही बार कर लें, और मैं अक्सर लोगों को कहती हूँ कि आप क्यों अपने और बच्चों के बूढ़े होने का इंतज़ार करते हैं, मैं जो बात अभी हज के मौजू पे कहने वाली हूँ इसको गौर से सुनिएगा। हमारे कल्चर में अमूमन बच्चों के पैदा होने के फ़ौरन बाद से लेकर, ख़ास तौर पे उनके फिर बालिग होने पे, उनके कैरियर और उनकी शादी की फ़िक्र होती है। अल्लाह करे इसी तरह हमें उनके हज की फ़िक्र हो जाए। हज एक ऐसी इबादत है, शऊर के साथ, इल्म के साथ, फहम के साथ, अगर जवानी के बिल्कुल आगाज़ में कर लिया जाए तो ज़िंदगी का किबला बदल जाता है। माहौल का असर, दोस्तों का असर, मगरबी अफकार, आज के टर्म्स बहुत सारे मुसलमान पेरेंट्स के लिए चैलेंज बने हुए हैं। इसका एक बहुत खूबसूरत हल अपने बच्चों को बार बार हज और उम्रे के लिए लेकर जाएं। वेकेशन प्लान है, कोई चीज़ कम कर दीजिए, पाकिस्तान इंडिया के ट्रिप के बीच में ऐड करा लीजिए, लेकिन हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी वो नस्लें जो वेस्ट में पल रही हैं, ख़ास तौर पे, एक बात, दूसरी बात, जिन्होंने इस्लाम का गलबा नहीं देखा, तीसरी बात, जिन्होंने हिस्ट्री नहीं पढ़ी, और चौथी बात, जो नेट और मीडिया और सोशल मीडिया के असर में डिप्रेस रहते हैं कि हम मुस्लिम्स ऐसे क्यों हैं और सब हमें ही क्यों कहते हैं, उनको एक दफ़ा अल्लाह का घर दिखाइए। वहाँ जाकर एक रौनक तारी होती है, एकदम दिल पकड़ा जाता है। इतने ज़्यादा मुसलमानों को हमने कसरत से देखा नहीं होता, इतने ज़्यादा मुसलमानों का गेटअप हमने नहीं देखा होता। हम तो शर्मिंदा शर्मिंदा मुसलमान है ना, कुछ थोड़ा सा अगर इजहार भी करना चाहें अपने दीन का तो वो भी इधर उधर देख के करते हैं कि कोई माइंड तो नहीं करेगा, और NOC ले के करते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। लेकिन वहाँ जाकर नेकी करना, इस्लामिक गेटअप का इख्तियार करना, और सबसे बढ़कर 5 वक्त की नमाजों पे मस्जिद की तरफ भागना, कोई क्वेश्चन ही नहीं है, देर इज़ नो अदर चॉइस कि आप दुकान पे बैठे रहें और नमाज ना पढ़ें, और आप अपने काउंटर पे अपने ऑफिस में बैठे और काम करते रहें। ये दो तीन चीज़ें ऐसी हैं कि जो अगर इस दौर में मुसलमान उम्मत कर ले तो बहुत सारे मसाइल पे काबू पाया जा सकता है। हज इस्लाम की एक बहुत खूबसूरत इबादत है। इंट्रो में बात की थी कि जैसे हर रुकन की, हर इबादत की एक रूह है ना, तो हज की जो रूह है ना वो इत्तेहाद है, यूनिटी, बिया नेशन, उम्मा बनो। वो कहते हैं ना कि सबक फिर पढ़ सदाकत का, शुजात का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। ये सबक मिलता है हज में जाके। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को साथ लेकर ये बिल्डिंग बनवाई थी, और साथ ही साथ दुआएं कर रहे थे कि रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नक अंतस समीउल अलीम, और साथ ही क्या कहा, वारीना मनासिकाना। और जूं ही ये सब कुछ हो गया तो क्या कहा कि अल्लाह हमारे लिए क्या हुक्म है, अल्लाह ने क्या कहा, इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, तो क्या पूछा, काला व मिन ज़ुर्रियती, यानी अगर आप हज, मक्का, खाना काबा, इसकी हिस्ट्री और इसके इर्द गिर्द देखें तो असल में ये नस्लों के लिए ज़मीन हमवार की जा रही थी। हज अगर आप पूछें क्या है, हा जीम जीम, हज इरादा करना, कसद करना। क्या मतलब, किस चीज़ का कसद, कि आप मस्जिद हराम की तरफ निकलेंगे, मखसूस दिनों में मखसूस काम करेंगे, इसको हज कहते हैं। फतहुल कदीर बहुत खूबसूरत किताब है, उसकी जिल्द 2 पेज 120 पे जाकर देखिए। मस्जिद हराम की तरफ, यहाँ फिर नोट कीजिए, मस्जिद हराम, मक्का नहीं और मदीना नहीं और मस्जिद नबी नहीं, हज का कोई एक रुकन भी मस्जिद नबी से मुतल्लिक नहीं है, ये है ला इलाहा इल्लल्लाह। हज जैसी इबादत जिसमें हम बड़े शौक़ से, मोहब्बत से मक्का के साथ साथ मदीना भी जाते हैं, बैतुल्ला में नमाज़ें पढ़ने के साथ साथ मस्जिद नबी में भी पढ़ते हैं, लेकिन अगर इन चीज़ों को अगर एक साइड पे कर भी दिया जाए तो हज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ सिर्फ दीन का मिजाज तो समझें। हम होंगे नहीं, अख्तियातन ये, और ये जो हमारे कल्चर में 40 नमाजों का कॉन्सेप्ट है, ये आपकी मोहब्बत की बात है। आप 40 नहीं, आप कोशिश करें आप वहाँ 50 नमाजें पढ़ें, कोई हरज की बात नहीं है। लंबा ट्रिप लेकर जाएं, मदीना में जाएं, रहें उधर जब तक आपका मदनी दौर ना पूरा हो, सीरत में वापस ही ना आए, लेकिन रिचुअल्स में इसका कोई दखल नहीं है। ये एक अल्लाह का बहुत खूबसूरत इंसाफ है। वरना आप देखिए, अब आप और मैं जिस तरीके से जाते हैं, कोई शुरू में जाता है, कोई बाद में जाता है, किसी का सफ़र मदीना से शुरू होता है, किसी का मदीना पे ख़त्म होता है। अगर बैतुल्लाह में जाने तवाफ़ इफाज़ा के लिए और अरफात के मैदान में जाने की तरह मस्जिद नबवी में भी सबका दाखला लाजिम कर दिया जाता, आप सोचिए कि अभी भी हज के दिनों में जिन्होंने किया उनको इसका अच्छी तरह से अंदाज़ा होगा, कितना 3-4 किलोमीटर है मक्का, मीना, मुजदलिफा और अरफात। इट्स अ वॉकिंग डिस्टेंस, इसके बावजूद कितना क्योस होता है। और अगर मदीना मनवरा और मस्जिद नबवी का कुछ हिस्सा या वहाँ जाके कुछ करना भी हज का पार्ट बनता, हाउ बिग प्रॉब्लम विट बी, पहली बात। फिर दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला बंदे को उसकी वुस्सत से ज़्यादा नहीं आजमाते। हज कब फ़र्ज़ हुआ? अल्लाह ने हज को 9 हिजरी में फ़र्ज़ किया। ज़ादुल मआद बहुत ही खूबसूरत किताब है, पार्ट 2 101 पेज पे देख लीजिए, और सूरह आल इमरान 97, वलिल्लाहि अलन नासे हज्जुल बैती मन इस्तता इलैहि सबीला वमन कफर फइन्नल्लाह गनीयुन अनिल आलमीन। लोगों पर अल्लाह का हक है कि जो इस तक पहुंचने की इस्तेआत रखता हो वो इसका हज करे, और जो इनकार करे तो यकीनन अल्लाह ताला तमाम जहानों से बेनियाज है। और सही मुस्लिम की रिवायत नोट कीजिए, 1337, आपने फरमाया, ए लोगो, तुम पर हज फ़र्ज़ कर दिया गया, बस तुम हज करो। हज इस्लाम का 5वां रुकन है, बुखारी 8। हज कितनी दफ़ा ज़िंदगी में करना फ़र्ज़ है, यानी हज कितनी बार करेंगे? एक मरतबा ओनली। अल्लाह के नबी ने पूरी ज़िंदगी में एक ही हज किया। सही मुस्लिम 1337। फिर इसी तरह हज के महीने कौन से हैं? कुरान में आते हैं। हज कौन से महीनों में आता है? शवाल, ज़िलक़ादा, ज़िलहज्जा का पहला अशरा। अमूमन लोग शवाल में सफ़र शुरू करते थे, और पैदल, घोड़ों और इस तरह बाज़ दफ़ा बहरी जहाज़ों में सफ़र करते करते ज़िलहज में पहुँचते थे, या ज़िलक़ादा की आखिरी तारीखों में, और फिर ज़िलहज में हज करके वापस पहुँचते थे। हज की फजीलत क्या है? बहुत दुख के साथ कहूँगी, इस साल ख़ास तौर पे, चूँकि हम लोगों ने नॉर्वे से हज का ग्रुप एक अनाउंस किया हुआ था, फ़र्स्ट टाइम हमने एक एक्सपीरियंस किया था कि हज का एक ग्रुप लेकर चले, और उस पर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पूरी बुक भी पढ़ाई, पूरा 1 वीक का कंटिन्यूस सेशन भी था। लेकिन जो चीज़ मेरे सामने आई, 90% मुस्लिम्स जो वेस्ट में रहते हैं, उन्होंने अभी तक हज नहीं किया हुआ। आप पाकिस्तान से अमेरिका आएँ या यूरोप आएँ, एक ही रास्ता है ना। आपको एनीवे मक्का से या मदीना के ऊपर से गुजरना ही पड़ता है, ऐसे ही है ना। लेकिन लोग इसको टालते रहते हैं। हालांकि ज़रा से फ़ज़ाइल सुनिए तो फिर आपको भी इंशाल्लाह शौक़ बढ़ेगा। सबसे बड़ी बात है फ़र्ज़ है, इसके बाद तो कुछ भी ना बोलूँ तो भी काफ़ी है। लेकिन फरमाया, हज मबरूर का बदला सिर्फ जन्नत है, बुखारी 1773। मबरूर क्या है? बिर से, नेकियों से भरा हुआ हज, यानी जिस हज में बहुत सारी नेकियां की जाएं उसका बदला सिर्फ जन्नत ही मिलेगा, इससे कम नहीं मिलेगा। दूसरी रिवायत, हज करने वाला न्यू बॉर्न बेबी यानी नौमौलूद बच्चे की तरह गुनाहों से पाक हो जाता है, बुखारी 1521। सोचिए क्या फीलिंग आती है, प्योरिटी, खूबसूरती, इनोसेंस, मुस्कुराहट। फिर इसी तरह हज मबरूर अफजल अमल है, बुखारी 1519। फिर नेक्स्ट, मुस्तकिल पै दर पे, यानी एक हज फिर उम्रा फिर हज उम्रा से पै दर पे हज से फकर और गुनाहों का खात्मा हो जाता है, तिर्मिजी की रिवायत 810। ये ऐसी है जैसे गंदे कपड़े को बार बार धोएं तो फिर आखिर में धब्बे ख़त्म हो जाएंगे ना। फिर इसी तरह से हज गुज़श्ता तमाम गुनाहों को मिटा देता है, सही मुस्लिम 321। और एक यंग मदर ने कहा, अरे अभी हज नहीं करना, फिर आएंगे तो दोबारा फिर गुनाहों में पड़ेंगे, आखिर में बूढ़े होंगे तो कर लेंगे। तो मैंने कहा काफी अकलमंदी की बात है अगर शर्त यह कि आपको यकीन हो कि आप बूढ़े होंगे। लोग सोचते पैसे जाया हो जाएंगे, हज करके आएंगे, इतनी मुश्किल से नामा माल साफ कराया और फिर गंदा हो जाएगा, तो ये नहीं सोचना चाहिए। फिर इसी तरह हज और उमरा करने वाले को इनके खर्च और मेहनत के मुताबिक अजर मिलता है। बुखारी की रिवायत 1787। बस लोग सवाल करते हैं, मैं यहाँ बनाकर उसका जवाब अभी इसी हदीस की रोशनी में दे दूँ। कुछ लोग कहते हैं कि आप बड़े होटलों में रहना चाहिए, पैकेजेस लेकर महंगे, यानी आपको बताइए सिल्वर स्टार और गोल्डन स्टार, उसमें खर्च ज़्यादा होता है और फासला कम होता है, लग्जरियस है। और इसके दूसरी सूरत यह कि दूर रह लें, छोटे छोटे होटलों में रह लें और पैसा बचेगा, लेकिन उसमें मुशक्क़त ज़्यादा है। तो मैं अक्सर इसी हदीस को सामने रखती हूँ कि जो पैसा ज़्यादा लगा कर जाएगा उसको पैसे का अजर है। आप रिलैक्स रहेंगे घरों में, जब साफ़ सुथरी जगहों पर रहते हैं तो वहाँ साफ़ सुथरा रहें, करीब होने की वजह से सुस्ती नहीं आएगी, मस्जिद में जाने की रास्तों में नहीं फंसेंगे, तो आपको अल्लाह पैसे की वजह से ज़्यादा देगा। तो जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते वो दूर रहेंगे तो उनको मेहनत का अजर मिलेगा, वो सदकल्बी। हर बंदे को कोशिश कीजिए हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाएं, ये फतवे बाजी छोड़ दें। आजकल ये भी बहुत हो गया, ये हज है जी, ये तो फैशन है, ये तो मॉल्स में फिर इतने बड़े होटलों में रहते हैं, एक एक रात का लाखों का किराया, ये है वो है, देना पड़ता है। जब आप बुजुर्गों के साथ जाते हैं, बड़ों के साथ जाते हैं या बच्चों वाली माएँ हैं, तो आप अगर दूर रहेंगे तो वो तो शायद एक आधी नमाज ही हरम में पढ़ेंगे, और वो गर्मी और जो एक ताफून और हराबी है, इबादत में खुशू खत्म होता है। तो हमेशा ये देखें कि मैं क्या कर सकता हूँ, और दूसरे को हमेशा अपने से अच्छा समझें। फिर हाजी को अपनी सवारी की वजह से भी अजर मिलता है। बहकी की रिवायत सही इब्ने हब्बान में भी है, हज करने वाले की दुआएं कबूल होती हैं। इब्ने माजा 2893। कितने लोग हैं जो सिर्फ हज और उमरे पे दुआएं करने जाते हैं, ये हमारा कल्चर है। बेटा मांगने जा रही हूँ, ठीक है जाइए मांगिए भी, कोई हर्ज नहीं, पर ये नियत ना करें कि बस सिर्फ बेटा ही लेके आना है, कुछ और भी लेके आना है इंशाल्लाह। फिर इस तरह अगर हज के लिए निकला हुआ शख्स फौत हो जाए तो इसके लिए मुकम्मल अजर है। सही तरगीब 1114। और क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसको किस हाल में उठाएगा कि वो तलबिया पढ़ रहा होगा, ये सही मुस्लिम की रिवायत है 2892। फिर इसी तरह आप देखिए कि हज किस पे वाजिब है, शर्तें के 5। नंबर 1 इस्लाम, वही हर एक शर्त में आ रहा है, बुखारी 8। नंबर 2 बलूगत, इसकी भी वही रिवायात बहुत सारी हैं, आप हाकिम लिख लीजिए 481 पार्ट 1। अक़ल, मजनून ना हो बंदा, अबू दाऊद 4402। नंबर 4 आज़ादी, यानी ग़ुलाम बेचारा अपनी मर्ज़ी से हज भी नहीं कर सकता, इसकी भी रिवायत जो है वो हाकिम 481 ही लिख लीजिए। नंबर 5 इस्तताअत, कैपेबिलिटी, आले इमरान 97, अभी ऊपर आयत मैंने पढ़ी भी आपके सामने। ख़वातीन के लिए दो शरायत लाजिम है इससे एक्स्ट्रा। नंबर 1 महरम का साथ होना, बुखारी 1862, मुस्लिम 3272। और दूसरी बात है कि वो इद्दत में ना हो, हत्ता कि यहाँ तक आता है कि अगर शौहर साथ था और वहाँ फौत हो जाए तो औरत वापस आ जाएगी अपने घर में, वहाँ हज उसके बगैर नहीं करेगी। ये मौता इमाम मालिक की रिवायत है 1211। अब इधर भी कई सवाल हैं, फिर फिक्की इश्यूज आएंगे, कोई कहता है कर लो, कोई कहता है 40 साल से ऊपर की औरत, कोई कहता है 60 की, कोई कहता है ग्रुप्स में, कोई औरतों का ग्रुप, कोई कहता है वक्ती महरम, कोई कहता है बहनोई, है ना ये सवाल हमारे कल्चर में, अच्छा बहनोई को साथ ले जाएं, अच्छा किसी को बेटा बना लें। देखिए एक बात याद रखें, अपने लिए हमेशा दी बेस्ट लेवल रखें। ये सब कुछ करके लेना किससे है, अल्लाह से लेना है ना। जब अल्लाह ने एक औरत को रुख्सत दे दी है, और मेरे पास जब भी कोई सवाल लेकर आए, खास तौर पर साल में कितनी सिस्टर्स आई थी इस सवाल पे, मैंने कहा आपके शौहर, कहती वो नहीं जाना चाहते। कोई कहता है कि मुझे प्रॉब्लम है, बीमार हूँ, तो मैंने उन्हें कहा कि सिस्टर आप सबको भी यही कहूँगी, अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा इशू हो, आप खुद जाकर अकेले हज करके आके अपने हस्बैंड के लिए हमेशा के लिए दरवाज़ा बंद कर रही हैं। आपको हज कराने की नीयत से वो बेचारे हिम्मत कर ही लेंगे, आज नहीं गिल्ट होगा अगले साल उससे बाद, आप अकेले कर रहे हैं या वैसे ही चली जाएं किसी के साथ, तो वो तो फिर कभी सोचेंगे भी नहीं, और आपको फिर दोबारा खर्चा करके साथ जाना पड़ेगा। एक अगर बीमार समझते हैं या बड़ी उम्र में मिसाल, तो वो तो अकेले बगैर आपके जाएंगे नहीं। तो याद रखिए, तवासो बिल हक की तवासो बिल सब्र, इस भी रुआ साहब भी रुआ रहा भी तो नेकियों में एक दूसरे को साथ लेकर चले। और क्या एक औरत का कोई रिश्ता नहीं मानता? बेटा एक नहीं दो तीन, दामाद, भाई, शौहर, अल्लाह ने कितनी खूबियां दी। ये तो नहीं कहा कि सिर्फ शौहर के साथ जाओ, तो हमेशा अपने लिए दी बेस्ट को इख्तियार करें, फिर आगे अल्लाह पे छोड़ दीजिए। सवाल पैदा होता है कि इस्तेताद से क्या मुराद है, हाउ वी कैन डिफाइन इट। नंबर एक, सेहतमंद होना, रास्ता पुरअमन हो, ज़्यादा राह और सवारी का इंतज़ाम हो, रास्ते की कोई रुकावट ना हो, मसलन वीज़ा वगैरह आज के दौर में, या कैद ना हो, मसलन ज़ालिम हुक्मरानों का खौफ है। क्या आप किसी और का हज कर सकते हैं? इसको हज बदल कहते हैं। कर सकते हैं किसी और के लिए, शर्त ये उस शख्स ने खुद किया हो। नंबर दो, एहराम जब बांधा जाएगा तो नियत में उस शख्स का नाम लिया जाएगा जिसकी तरफ से हज किया जा रहा है। तीसरी बात, हज की जो वैसे अपने लिए भी शर्त है कि जो आपको हज बदल कर करा रहा है उसका माल हलाल कमाई का हो। फिर इसी तरह हज के भी अरकान हैं, नमाज के भी बता दूंगी एंड पे, जो किसी को एक का इशू है वो इंशाल्लाह एंड पे बता दूंगी। हज के 5 अरकान हैं। नंबर एक, नियत, बुखारी 1 और बैजीना 5। वकूफ़े अरफा यानी 9 ज़िलहज को मैदान अरफा में, समझे कि सूरज निकलने से या जोहर से लेकर असर की नमाज के पूरा होने तक का जो वक्त है उसमें खड़े रहना। सूरत बकरा 198 और इसी तरह से अबू दाऊद 1703। तीसरा रुकन है मुजदलिफा में रात गुजारना, वही 9 और 10 के बीच की, सूरत बकरा आयत 198, तिरमिजी 891। चौथा रुकन है तवाफे जियारा, जिसको तवाफे इफाजा भी कहते हैं, ये भी उन्हीं जामे तशरीक में ही करना होता है, सूरत हज आयत 29 और बुखारी 1733। और पांचवा है साई, मुस्तद अहमद जिल्द 6 421। हज का एक रुकन रह जाए तो क्या होगा, यानी इन पांच में से काम नहीं कर सके तो इसका हज नहीं होगा, इसका कोई कफारा या दम नहीं, आइंदा साल हज करना पड़ेगा दोबारा। चलिए, वाजिबात क्या है? वाजिबात कहते हैं जो वाजिब है। नंबर एक, मीकात से अहराम बांधना, सिलसिला सहीहा की रिवायत है 210। नंबर दो, रमी जमरात, जमरों को कंकरियां मारना, जिसको हमारे कल्चर में बड़े प्यार से शैतान कहते हैं, तो वो जमरात है। ये कौन सी जगह है आपको पता? जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बच्चे को ज़िबह करने के लिए ले जा रहे थे, इन मकामात पे आके शैतान ने बहकाने की कोशिश की थी और उन्होंने पत्थर मारा था। हम कितने पत्थर मारते हैं जब हम नेकी का इरादा करें और शैतान हमें रोके, हम कहते बहुत अच्छे वक्त पे समझ आ गई, पहले ही बच गए। नहीं, वो पत्थर मारते थे। तो बहरहाल, ये जमरात को कंकर मारना, मुस्लिम 1297। फिर खल्क या तकसीर, यानी या तो सारे बाल मुंडवा देना या उनकी ट्रिमिंग करवाना, सूरह फतह 27 और बुखारी 1727। और अगली चीज़, अय्यामे तशरीक की रातें मीना में गुजारना, बकरा 203। और आखिरी चीज़, तवाफ़े विदा, जो मक्का छोड़ते वक्त किया जाता है, सही मुस्लिम 3219। कोई वाजिब रह जाए तो क्या होगा? ये जो भी हमने पांच देखे, तो फिदिया दिया जाएगा, दम देना जिसको कहते हैं। जानवर कुर्बान करने की ताकत ना हो तो फिर 3 रोज़े हज के दौरान और 7 रोज़े घर जाकर रखने होंगे। और यही कफारा है उस शख्स का जो के, याद है आपको, बाल काट ले। कुरान की आयत याद आ रही है? जी, वही आयत है। चलिए, जहाँ हज की बात आएगी वहाँ मीकात भी होगा। मीकात क्या है? जहाँ से अहराम बांधा जाता है। हर जगह का अलग है। आप किताबुल हज में से जाके सारे मुकाम नोट करेंगे कि मक्का में आने के जो 5-6 मुख्तलिफ रास्ते हैं उसमें किधर से क्या है। फिर इसी तरह से अहराम क्या होता है? क्या अहराम कपड़े का नाम है? नहीं, क्या है? अहराम कैफियत का नाम है। ख़ास लिबास पहनकर हज या उम्रे की नियत से जब मीकात से बंदा गुजरता है, इस सोच के साथ कि मैंने उम्रा करना है या हज करना है, इस कैफियत को अहराम कहते हैं। ठीक है, अहराम में क्या क्या होता है? दो अनसिली चादरें मर्दों के लिए, एक तहबंद के तौर पे और एक ऊपर ओढ़ी जाएगी। दूसरी, एहराम में सर और चेहरा नंगा रखा जाता है। जूता ऐसा पहना जाता है कि जिसमें टखने खुले रहें, और जूता ना हो तो मोज़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन काट लिए जाएंगे टखनों तक। इब्ने खुज़ैमा की रिवायत है 2601। औरतों का क्या एहराम है? उनके अपने कपड़े। एहराम की कोई ख़ास चीज़ औरतों के लिए मखसूस नहीं है, जो पहनती हैं वही। और ये बुखारी की रिवायत है 1545। हाँ, ख़ास तौर पे एहराम में जिस वक़्त आप एहराम की कैफियत में, तो निकाब, सिली हुई निकाब जिसको आप कहते हैं, और दस्ताने पहनने नहीं है, ठीक है? और इसकी मेरा ख्याल है कि आपको पूरी डिस्क्रिप्शन उस किताबुल हज में दी थी, याद है सबको? यही चादर ले लें, यानी एहराम में क्या करते हैं, सीधी सी बात लंबी चौड़ी के बजाय, जिन्होंने नहीं सुना वो समझ लें। एक औरत आम दिनों में निकाब करती है तो वहाँ मुंह खोल देगी जाके, कितना मज़ा आए, वो सारे उस शहर वाले कभी ना देख सके उस औरत को वहाँ देख लेंगे। आप खुद सोचिए ना, आप ग्रुप में गए चार छः फैमिलीज मिलकर, और उस फैमिलीज में आप हमेशा निकाब में होती थी, और आप हज के दिन वहाँ सबके सामने मुंह खोल लेंगे। डज इट मेक एनी सेंस? सेंस ही नहीं बनती। हज़रत आयशा कहती हैं, हम दूर से जब काफ़िलों में होती थी तो हम निकाब नहीं पहनती थी, पर जब कोई मर्द हमारे पास से आता तो हम अपने दुपट्टे से घूंघट कर लेती थी। तो देखिए, ये चादर, जैसे आज मैंने ढीली चादर ली है ना, अब ये चादर है, नीचे आप जो मर्जी अबाया पहने, तो इसके साथ यूं कर लेंगे, यहाँ इसको एक पिन लगा लेंगे, दैट्स इट। एहराम में हम ऐसे ही करते हैं, मोटा लेते हैं, काला दुपट्टा नॉर्मल तो होता ही है, लेकिन जब एहराम की चादर हो ना, तो काला प्लेन मोटा सा दुपट्टा, चिपकने वाला बल्कि, जो स्लिपरी ना हो, वो ले जाते हैं। जूं ही जहाज़ में ऐलान होता है कि हम मिकात से गुजरने वाले हैं, नियत करके मोटी चादर में पिन्ने लगाकर पूरा वक्त आप इसमें रह सकते हैं। बात वाज़ है इसमें, यानी कोई इतनी बड़ी इख्तलाफ की बात नहीं। और सच्ची बात है कि जो कहीं और ना करे उसके लिए तो ये क्वेश्चन ही नहीं है, ठीक है? और सवाल अमूमन उलझाने के लिए किए जाते हैं, तो आप अपने समझ के साथ देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है? फिर इसी तरह से नासिरुद्दीन अल्बानी का एक कॉल सुन लीजिए। कहते हैं कि औरत का अपने चेहरे पर कपड़ा डाल लेना जायज़ है, ये निकाब डालना नहीं कहलाएगा, इन दोनों को बराबर करार देना खता है। आप इनकी किताब पढ़ लीजिए, तालीक़ात, पूरी तफसीर है उसमें पढ़िए, और इब्ने कय्यम रहमहुल्ला का भी यही कॉल था। अब इतने बड़े बड़े उलमा के बाद फिर हम किसको पूछें? और इब्ने कय्यम की बहुत मारूफ किताब है अल आलामुल मुअव्विकीन, मुझे उम्मीद है कि आपने कुछ ना कुछ इसका हिस्सा पढ़ा होगा, बहुत ही खूबसूरत बुक है। तो उसके पेज 269 पार्ट 1 पे ये बात मौजूद है। और फिर यहाँ कहूँगी बड़ी इज्जत और माजरत के साथ, ऐसे मसलों में इख्तलाफ नहीं करना चाहिए, सिर्फ ऐसे ही सवाल नहीं पूछने चाहिए कि जिससे एक दफ़ा तो किसी के दिल में शक ज़रूर ही आ जाए कि हो ना हो इनका मसलक और अकीदा क्या है, ठीक है? फिर इसी तरह से आप देखिए कि एहराम बांधने के तरीके और ये सारी चीज़ें आपको अल्हम्दुलिल्लाह उन किताबों में मिलती हैं जो हज से और उमरे से पहले दी जाती हैं। हर चीज़ का हवाला और रिवायत मेरे पास अभी भी मौजूद है, लेकिन मैं इस सोच से नहीं दूंगी कि आप किताबुल हज उसमें से इन सारे रेफरेंसेस को नोट कर, और जहाँ ये लगाएं वहाँ उसका लिंक भी वेबसाइट पे लगा दें, ताकि जिन लोगों ने नहीं पढ़ा सुना उनको उधर से फ़ायदा हो जाए। तो बहरहाल, जब सर पड़े उस वक़्त ही नहीं लेना चाहिए, ये चीज़ें अब हमें ज़ुबानी याद भी हो जानी चाहिए। कुछ एहराम की सुन्नतें भी हैं, खूबसूरत काम। नंबर एक, गुसल करना, एहराम का पाक साफ सफ़ेद और दो चादरों में होना, यानी वाइट होना शर्त नहीं है, लेकिन अच्छी बात है अगर वाइट हो। फिर एहराम नफिल या फ़र्ज़ नमाज से फारिग होकर बांधा जाए, नाखून काटे जाएँ उससे पहले, मूछें साफ़ की जाएँ, अंडर आर्म्स के बाल साफ़ किए जाएँ। फिर इसी तरह, जब भी हालत बदली जाए तो तलबिया किया जाए, यानी बस में बैठे हैं, जहाज़ में हैं, तो गाहे बगाहे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ा जाए सवार होते हुए उतरते हुए, और तलबिया के बाद दुआ करना और नबी सल्लम पर दुरूद भेजना। क्या काम कर सकते हैं हम एहराम की हालत में? नंबर एक, गुसल, बुखारी की रिवायत 1840। सर या बदन पर ख़ारिश कर सकते हैं, बुखारी 1840। इलाज के लिए आँखों में दवा डालना या सुरमा लगा सकते हैं, मुस्लिम 2887। इलाज के लिए जिस्म से खून निकलवा सकते हैं, बुखारी 1835। खुशबू सूंघना, पेटी बांधना, अंगूठी, घड़ी और ऐनक पहनना। अब आप कहेंगे ये भी कोई बातें हैं, ऐनक पहन सकते हैं कि नहीं, सवाल कीजिए। मैं कहती हूँ इतने गहरे सवाल हम हलाल हराम के अंदेशे में भी तो करें, और ये रिवायत बुखारी की 1537 है। हमारी सिस्टर्स गई थी इस साल जो हज में, तो उनमें से किसी ने अपने एक्सपीरियंस सुनाया कि कितनी पाबंदियां हैं लोगों के ऊपर अल्लाह की पनाह, और कह रही कि हम बैठे हुए मीना के खैमों में थे या कहाँ थे, नहीं वे ऐसे सहलाने को लेटी, और जब साथ लेटी तो हाथ यूं रखा ना, तो जो उनका दुपट्टा था वो उनके मुंह पे, जैसे हम अक्सर ही अगर यहाँ अभी भी मैं लेटूंगी तो मुंह पे हाथ रख, तो कहती फौरन एक औरत भागी आई, आप पे दम है किस बात का, कहती आपके चेहरे को कपड़ा लग गया। फिर क्या हुआ अगले दिन या किसी भी वक्त हुआ, कह रही गर्मी थी प्यासी, कोई बाहर से आया उसने मुझे ऑरेंज दिया, तो मैंने उसको छील के तो खाना शुरू कर दिया। तो एक दूसरी, अब ये जो दूसरे थे ना ये किसी और स्कूल ऑफ थॉट को प्रेजेंट करते थे, भागी आई कहने लगी आप पे तो दम पड़ गए, क्यों, कहती आपने ऑरेंज खा लिया। अच्छा ऑरेंज खा लिए तो दम क्यों, कहती क्योंकि इसमें खुशबू थी। आप मुझे बताइए हम इतने पिकी सूद के मामले में क्यों नहीं है, हम इतने पिकी जिना और फहाशी और उरियानी और इसराफ और शादी ब्याह की रस्मों पे क्यों नहीं है, हम इतने पिकी अपनी जीनत के इजहार के मामले में क्यों नहीं है। कभी बंदा सोचे ना तो वाकई उसकी जुबान बंद हो जाए। इस तरह का दीन लोगों को आप देंगे तो मुझे बताइए कि लोगों का जीना तो उबर नहीं होगा, लेकिन चूंकि आंखें बंद करके बगैर इल्म के सुनते हैं तो पढ़ते हैं, और फतवे दे दिए हमारे ग्रुप के साथ जो गया उनके ऊपर तो इतने दम में इनका हज ही नहीं हुआ, तो फिर उन्होंने कहा आप हमें पैसे दें फिर हम अगले साल एक और कर लेते हैं। जितनी आप सोचिए सही, इतनी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर आगे बेवकूफ़ियों की तरह जाना। देखिए शरीयत शरीयत है, ये मुमकिनाक नहीं है, ना ये मजाक है ना ये हंसी है, ये चीज़ें जो हम सुनते हैं पढ़ते हैं इस रियल थिंग, वमा हुआ बिल हजल, ये हंसी मजाक तमाशा नहीं है, लेकिन ये बाज़ दफ़ा ऐसी गैर हकीकी बातें करके हम इसको मजाक बना देते हैं। तो बहरहाल इस चीज़ से बचना चाहिए। फिर इसी तरह से आप देखिए टूटा हुआ नाखून फेंकना, मुख्तसर बुखारी में नासिरुद्दीन अल्बानी की भी ये रिवायत है 365 में। फिर इस तरह खैमे या छतरी का साया हासिल करना, कई लोग खैमों के नीचे नहीं आते, कहते सर पे छत ना हो। आपको याद है सूरह बकरा की वो आयतें, क्या करते थे अहराम की हालत में घर से निकलते और कोई चीज़ भूल जाते, घर के बैग से आते थे, कहते थे साये में से नहीं गुजरना, वही सोच है। फिर इसी तरह मुबाह काम जो है, मिसाल है कि क्या काम कर सकते हैं, साबुन है हल्की फुल्की उसमें स्मेल तो हर चीज़ में ही होती है, इट्स ओके वैसे ये भी काफ़ी लोगों का कारोबार चलता है इन चीज़ों से, बिल्कुल फ्रेग्रेंस फ्री चीज़ें फिर लोग लेके साथ जाते हैं। एक खास आता है, एक होता है परफ्यूम लगाना खुशबू उड़ाना, वो तो नहीं, लेकिन हर चीज़ में कुछ ना कुछ तो अपनी होती है। फिर इस तरह समंदरी जानवर का शिकार करना जायज़ है, सूरत मायदा 96, 5 मूजी जानवरों में जिसमें बिच्छू भी है कौवा भी है सांप भी है, इनको कत्ल करना भी जायज़ है, बुखारी 3314। और अहराम की चादरों को धोना या बदलना ये भी जायज़ है, बुखारी 1545। क्या पता चला कि अल्लाह ताला किसी पर इस तरह का बोझ नहीं डालते कि जो वो इंसान बर्दाश्त ना कर सके। जो भी चीज़ इंसान करता है उसके अंदर हमेशा रूम फॉर इम्प्रूवमेंट होता है। अगर हम किसी भी इबादत के दौरान इतने अल्लाह कॉन्शियस हों इस हद तक कि अल्लाह ताला ने हमें जो हुक्म दिया उसको मानना है, तो याद रखें कि हमारी इन चीज़ों पे तवज्जो भी नहीं जाएगी। तो इल्म लेकर अच्छे तरीके से जाएं। एक सिस्टर थी हज पे जा रही थी, नए सूटकेस नए चप्पल नए जाए नमाज, ये पुराने क्यों, कहती अल्लाह के घर जा रहे हैं ना, तो हम भी तो पुराने ही हैं ना। यानी इख्तमाम अच्छा होता है लेकिन जब वो तकल्लुफात और इस तरह की मुश्किलात में फंस जाए तो वो दुरुस्त नहीं है। फिर इसी तरह से आप देखिए खतरे के हालत में असलहा साथ रखा जा सकता है, जैसे उस दौर में लोग लेके चलते थे, ये बुखारी 1844 है। औरत सर के बाल खोल कर कंघी कर सकती है, सही मुस्लिम 2910। फिर औरत जेवर भी पहन सकती है, रंगीन कपड़े भी पहन सकती है, बुखारी 1545। और उम्रा और हज का एहराम दोनों बराबर है, जो हज की पाबंदी है वही उम्रे की है।